हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण। तो किसका घर है आपका बेटी, क्या नाम? मधु, मधु मंत्री। तो मधु और प्रभु जी घर का नाम है मनोज मंत्री, मधु मनोज मंत्री के घर में आप सब लोग आज सूरत में हरि कथा हरि कीर्तन के लिए आए हैं। मधु मंत्री का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, हम सब के लिए सत्संग का ये स्थान उन्होंने दिया है और सबको निमंत्रण किया है, और आप सबका धन्यवाद करता है करते हैं कि आप आए हैं। सूर्य उगने से सूर्य अस्त तक रोज दिन बीता जा रहा है, मालूम ये मालूम तो हम सबको है, ये हम सबको मालूम है कि रोज सूर्य उगने से सूर्य अस्त होने तक हमारा दिन जा रहा है। हरे कृष्ण हरि बोल। और सब लोग भी घड़ी घर में दो तीन चार लगाते हैं, कमरे में भी, ड्राइंग हॉल में भी, हाथ में भी, टेबल के भी, काय के लिए कि हमको टाइम का पता लगे क्या करने के लिए। उम्र जा रही है बीती हुई, समाचार मिलता रहे कितनी गई है? पारसी के कवि ने कहा है गाफिल, गाफिल कहते हैं अज्ञानी को, गाफिल का मतलब है गफलत की नींद में सोया हुआ, जो उठता नहीं है उठाने से भी अज्ञानी। ये घड़ी तुम्हें देती है मनादी, मनादी का मतलब चेतावनी। ये घड़ी जो तुम्हारे घर में लगी है, तुम्हारे हाथ में है, तुमको रोज चेतावनी देती है। किस बात की? गर्दू ने, गर्दू का मतलब सेकंड कांटा जब घूमता है, गर्दू मतलब गर्दश, गर्दश का मतलब घूमना। गर्दू ने घड़ी एक उम्र की ओर घटा दी, जैसे ही सेकंड कांटा घूम के आया आपने समझा एक मिनट आगे बढ़ा, लेकिन आपकी उम्र पीछे गई। तो ये घड़ी तो इधर बेटा ये देखो, ये इधर ये आसन, हरे कृष्ण, ये देख दे इसके ऊपर बैठो, बैठ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बैठ जाओ। एक सेकंड गया हमारी उम्र गई। गाफिल मतलब मूर्ख। ये घड़ी तुम्हें रोज चेतावनी देती है कि सेकंड कांटा घूमता है तो उम्र का एक क्षण जा रहा है। कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है एक मिनट जिंदगी का। एक सेकंड की इंपॉर्टेंस का पता तब लगता है जब अचानक एक्सीडेंट से आदमी बचता है, एक सेकंड का फर्क हो गया, बच गए। और एक मिनट का महत्व कब पता लगता है? जब ट्रेन छूटने लगती है, अरे एक मिनट पहले आती, देखो सामने जा रही है, एक मिनट का पता लगता है। ऐसे कितना महत्वपूर्ण ये मिनट है, हमको उस वक्त पता लगता है जब ऐसे हमारे हाथ से कोई चीज निकल जाती है। लेकिन यहां भक्ति विनोद ठाकुर का दृष्टिकोण ट्रेन निकलने का भी नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम होते होते दिन गुजरे जा रहे हैं, आपके दिल के राजा को आप भुला के क्यों बैठे हो? बड़ा एक शब्द जो बोला है आपके दिल का राजा, अपने दिल का राजा। अब ये हमारा प्रश्न है कि हमारे दिल का राजा है कौन। समस्या ये कि हमने दिल के राजा बहुत बना रखे है, ये हमारी समस्या है कि दिल का राजा है कौन, पहले ये निर्णय करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान का सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबकी दिल में बैठा हूं। वो कहता है मैं सबकी दिल में बैठा हूं, मैं दिल का राजा हूं। वो बोलता है मैं हूं, वो तो कहता है मैं आपकी दिल का राजा हूं, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं। जब हम मानने को तैयार नहीं है तब वो कहते हैं ना हम प्रकाशति सर्वसा, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं। क्या करते हो, घूंघट निकाल के बैठ जाता हूं। मैं क्या करता हूं, ना हम प्रकाशति सर्वसा योग माया समावृत, अपने आप को योग माया से पर्दे में ढक लेता हूं। क्यों ढक लेते हो, बोला मेरे को दिल का मालिक नहीं मानते हैं, और किसी को मानते हैं तो मैं चुप जाता हूं, क्या करूं। मैं बैठा हूं कब से उनके साथ, उनके दिल का मालिक बना हुआ, लेकिन वो मेरे को पहचान नहीं रहे हैं। और हम अपने आप से पहचान भी नहीं सकते, ये दूसरी समस्या है कि हमारे दिल का राजा कौन है, ये हम अपने आप पहचान भी नहीं सकते हैं। कम से कम भारत संस्कृति में एक बार विवाह के बाद स्त्री कहती है मेरे जीवन का मालिक पति है, इतना कम से कम भारत में तो है। दुनिया में तो दिल का राजा उनका हर दो हफ्ते में बदलता रहता है। ये उधर तो इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है कि दिल का राजा कौन। आपने देखा है छोटा सा दिल के रंग नमूने का लॉकेट बनाते हैं, उसके अंदर जो राजा होता है उसका फोटो होता है, फिर गले में डालते हैं। देखा है आपने, ये दिल के राजा की पहचान है। लोग डालते हैं दिल का राजा, अब किसको डालना चाहिए ये मालूम नहीं, ये समस्या ये कि दिल का राजा है कौन है। भक्ति विनोद ठाकुर को कैसे ये आ गया कि दिन रात ऐसे बीते जाता है, सूर्य उगने से सूरज अस्त होने तक हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, और हमने अपने दिल के राजा को अब तक पहचाना भी नहीं है। पहचानना, उस पहचानने के बाद उसकी राजा का क्या करना पड़ा, राजा की सेवा करनी पड़ती है, राजा को प्रसन्न करना पड़ता है। राजा को खुश करोगे तो संसार में सुखी रहोगे, तो राजा को ही प्रसन्न करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो राजा है कौन पहले ये पता लगना चाहिए ना। तो ये राजा हम अपने आप ढूंढ नहीं सकते, पहले ये मान लो, ये हमारे अपने ढूंढने का विषय नहीं है। ये हमारे अपने ढूंढने का विषय होता तो कब का हम ढूंढ लिया होते। ये जानकारी हमारे को शास्त्र और साधु पुरुषों से मिलती है और गुरुजनों से मिलती है। ये जानकारी हमारे को प्राप्त शास्त्र से मिलेगी, साधुओं के संग से मिलेगी और गुरुजन से मिलेगी कि हमारे दिल का राजा कौन है। यहां बड़ी सावधानी करनी चाहिए, प्रायः गुरु दिल के राजा बनना चाहते हैं, ये भी बड़ी गड़बड़ है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो कहते हैं लॉकेट में मेरा फोटो लगा दो, ये भी इधर गड़बड़ हो जाती है। बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन है लॉकेट में फोटो लगाने के लिए। दिल का लॉकेट, उसमें फोटो लगाने की बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन है। हमारे को दिल के लॉकेट बनाना चाहिए, उसमें राधा कृष्ण का फोटो लगा होना चाहिए, और लोगों को बोला यही एक लगाया कर बस, इसके बाद इससे कॉम्पिटिशन किसी को और करने की जरूरत नहीं है। ये है दिल के राजा असल से। यशोदा सुत नहीं भज्यो, वो दिल का कौन है राजा, दूसरी लाइन में कह दिया वो यशोदा सुत दिल का राजा है। तो अपनी मर्जी से नहीं बताया है, भगवत गीता के आधार के ऊपर बताया है। सुहृद सर्वभूतानाम, मैं सबका दिलबर दोस्त हूं। सुहृद का मतलब स्व, मतलब मैं स्वयं, और हृदय का मतलब दिल, जो तुम्हारी दिल है उसका मैं राजा हूं, तुम्हारी दिल का राजा मैं हूं, सुहृद मैं तुम्हारा हूं। तो राजा का काम क्या है, प्रजा को सुखी रखे। तो हमारे को सुखी रखना, हमारी सारी देखभाल करना, ये हमारे दिल के राजा का काम है। तो आज हमारा विषय ये कि हमको पहले हमारे दिल का राजा कौन है, इसको चुनने का प्रयास करना चाहिए, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे दिल का राजा। हरे कृष्ण बेटे आइए, मोना आ गई, ख्याति, हरे कृष्णा। बात ये चल रही है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सूरज उगने से सूरज अस्त होने तक हमारी जीवन कटती जा रही है। और सुखदेव गोस्वामी दूसरा स्कंद भागवत शुरू करते हुए परीक्षित महाराज को कहते हैं, इस दुनिया के मूर्ख लोगों के लिए सुबह उगने से काम पे जाते हैं, गधा मजूरी पागलों की तरह काम करते हैं, और शाम को लौट के आते हैं केवल या तो भोग में लगते हैं या नींद में सो जाते हैं। रात सोने में बीत जाती है या भोग में बीत जाती है, और दिन पैसे के पीछे पागलों की तरह भागने में पूरा हो जाता है। इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमें करना क्या। ये सुखदेव गोस्वामी जैसा बहुत कोमल हृदय व्यक्ति जो सबसे प्रेम करता है, जिसके लिए पेड़ ये कह रहे हैं कि वो सबको अपना हा मानता है, आदमी नहीं पेड़ पौधे कह रहे हैं कि वो सबको, वो सबके में हृदय में जैसे परमात्मा प्रेम करता है ऐसे सुखदेव सबसे प्रेम करता है। ये सुखदेव ऐसे कठोर वचन बोल रहा है परीक्षित महाराज के सामने कि ऐसे लोगों को सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या पढ़ने का टाइम मिल जाता है, लेकिन ये लोग एक काम नहीं करते हैं जो सब लोगों को सब समय सब जगह, सब लोगों को सब समय सब जगह और सब लोग सब समय और सब जगह जगह जो काम एक करना चाहिए वो नहीं करते। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि सब लोगों का सब समय सब जगह एक काम करने के लिए कौन है, कौन सा काम है जो करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो। ये एक प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, सब लोगों का सब समय सब जगह, इसका मतलब दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सब का एक ही धर्म है, वो क्या है, इसका अर्थ वो ये हुआ। और दूसरा प्रश्न का भाग ये था, जिसका जीवन का अंत समय बिल्कुल निकट है उसको क्या करना चाहिए, अथवा जिसकी घड़ी घूम के पूरी हो चुकी है, दिन पूरे हो गए जीवन के, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव महाराज उत्तर देते हैं, तस्माद भारत, मतलब भारतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, ईश्वर सर्वात्मा, सर्वात्मा का अर्थ है जो सबके हृदय में का राजा है, सर्वात्मा का अर्थ है सबके हृदय का राजा, और सर्वात्मा का अर्थ है जो सबसे प्रेम करता है। ईश्वर जो नयनता है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके करने के पीछे नयनता भगवान है, वही सब संचालन चला रहा है। ईश्वरो भगवान हरि, और हरि भी कह दिया, सर्वात्मा कह दिया, ईश्वर कह दिया, भगवान कह दिया और हरि कह दिया। भगवान का अर्थ है कि वो साक्षात षड गुण संपन्न पुरुष है, भग का मतलब होता है छे, षड गुण संपन्न जिसमें छे गुण अनंत नित्य निवास करें। एक तो अनंत हो, कौन से छह गुण हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य, समग्र रूप से पूर्ण रूप से ऐश्वर्य और सुंदरता, यश बल त्याग ज्ञान, ये छह गुण। हरे कृष्णा, ये सो जाएगा, सुनने दीजिए इसको सबको, ये तो सुन रहा है ना, बच्चा सुन रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, कैसे हो, हरि बोल। जैसे हम चाहते हैं बच्चे को सुला दें, कथा में डिस्टर्ब कर रहे हैं, असल में सारी दुनिया कथा में सोना चाहती है बच्चा जागना चाहते है। हरे कृष्णा, हरि बोल, कैसे है, ईश्वर सर्वात्मा भगवान अब छठ गुण संपन्न, भाई किसी के पास गुण होंगे तो आदमी होगा तब गुण होंगे ना, तो निर्गुण के पास तो गुण नहीं होंगे, तो गुण होगा तभी गुण होंगे ना उसमें। भगवान वान का मतलब जिसके पास हो, जैसे धनवान, अभी हम धनवान कहें किसी को तो आदमी को ढूंढना पड़ेगा ना, धनवान दीवार तो नहीं हो सकती। हाँ भाई धनवान, धनवान कहोगे कभी भाई फलाना धनवान है तो ऐसे तो नहीं कहेंगे आकाश धनवान है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। भाई धनवान है का मतलब कोई पुरुष होगा तब धनवान है, तो भगवान का मतलब पुरुष। और कैसा है ये भगवान? हरि। हरि के तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दो अर्थ मुख्य कहे हैं। एक अर्थ है अपने भक्तों के दुख संकट हर ले, अपने भक्तों के दुख और संकट हर ले, उसको हरि बोलते हैं। और दूसरा इतना प्रेम देता है कि फिर मन हर लेता है, दिल भी चुरा लेता है, इसलिए वो दिल का राजा है। पर दिल का राजा किसको बोलते हैं? जो दिल को चुरा ले, ऐसे ना, सीधी सी भाषा ये है कि दिल का राजा वो है जो दिल को चुरा ले। और हरि का अर्थ है जो अपने भक्तों का दिल चुरा ले। और गोपियां कहती हैं कि हमारा मन चुरा के ले गया। गोपियां अपनी भाषा में कहती हैं, जब उद्धव कहता है कि आप मन ब्रह्म में लगाओ, तब गोपियां कहती हैं मन एक था वो तो पहले ही कृष्ण लेके चला गया, अब दूसरा लाएं कहां से जो लगाए। इसका मतलब हमने अपने दिल के राजा को पहचान लिया है, गोपियां कहती हैं, और हमने अपना दिल उसको दे दिया। ये गोपियों की परिभाषा है, गोपियों की ठीक सी परिभाषा में ये बहुत स्पष्ट वो बात कहती हैं कि हमारे दिल का राजा वो है और उसके सुख के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हमारा अपना कोई सुख नहीं है व्यक्तिगत, सब कुछ उसकी सुख और सुविधा हमारे जीवन का लक्ष्य। ये बहुत ऊंचे स्तर की भक्ति का लक्षण है। जैसे कोई बच्चा कहे कि मेरे जीवन में मेरे माता पिता के सुख ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो उसको कहेंगे अच्छा अच्छा माता पिता का भक्त है, उसको अच्छा अच्छा माता पिता का भक्त माना जाएगा। कोई स्त्री कहे कि मेरे जीवन का सारा ही उद्देश्य मेरे पति का सुख संपत्ति है, तो कहा जाएगा पतिव्रता स्त्री है। ये परिभाषा है, संसार की परिभाषा ऐसी है। इसी को कहते हैं कि अपना सुख को भूलकर अपने जिससे प्रेम करता है उसको सुखी देखना चाहे। जैसे माता है अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती है, स्वयं कष्ट भी सह लेगी, रात को जाग भी लेगी, लेकिन बच्चे को कैसे भी होकर सुख बच्चे को मिले। तो ऐसे भगवान हमारा सब कुछ है। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो संकेत भी किया, दिल का राजा यशोदा सुत है, माधव भी उसका नाम है, या लेकिन यादव कहने का इसलिए कि अब माधव कहने से लक्ष्मीपति कहेंगे तो फिर कहीं भूल भी सकते हैं, इसलिए यादव कह देते हैं तो पता लगेगा कृष्ण ही माधव है, तो यादव साथ में जोड़ दिया कृष्ण के ऊपर संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए। तो कैसे भी करके इस जीवन में हमको पहला तो ये निर्णय लेना चाहिए हमारे दिल का राजा है कौन। कम से कम एक दो तीन, तो तीन लिखो, 1 2 3 लिखो, केवल 1 2 3, इससे ज्यादा लिखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे 2 से काम चलना चाहिए, एक शरीर एक आत्मा। निश्चित रूप से आत्मा का तो दिल का राजा भगवान है ही परमात्मा, इसमें तो कोई दाय राय नहीं है संसार के। संस्कार की दृष्टि से आत्मा भगवान कहता है मेरा अंश है, उसका मालिक मैं हूँ, उसको मेरी सेवा में लगना है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, ये तो चेतना महाप्रभु ने साफ बताया कि जीव आत्मा का स्वरूप ही ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, श्री कृष्ण ही उसके दिल का राजा है। अब हम भी तो सब आत्मा है, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन का राजा है। अब ये शरीर मिला है माता पिता से, फिर ये शरीर हमने समर्पित किया है अपने परिवार को, स्त्री है तो पति को, अथवा बच्चे हैं परिवार है तो हमारे एक, और फिर एक स्टेज के ऊपर आकर ये शरीर हम समर्पित करते हैं गुरुजनों को। तो 1 2 3 आत्मा के दृष्टि से सबके हृदय का राजा भगवान श्री कृष्ण है। शरीर की दृष्टि से हमारे को अपने माता पिता का सम्मान करना है, जब हमारा अवस्था उनकी देखभाल में है तो हम लोग कभी पूछते हैं भाई किससे प्रेम करते हो, तो माता पिता से प्रेम, और इतना माता से आप प्रेम करते हैं, कभी संकट आता है तो मुख से नाम क्या निकलता है, मेरी माँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, माँ का नाम ही तो निकलता है। संकट में सबके मुख से माँ का नाम क्यों निकलता है, क्योंकि हर दुख के समय जब रोए थे तो माँ ने चुप कराया था। तो ये भी संसार की ठीक से परिभाषा है, इसलिए वैदिक संस्कृति बैलेंस है। जब शिक्षा दे के बच्चों को घर भेजते तब कहते थे मातृ देवो भव, तुम्हारी मात पूजनीय है, माता का तुम्हारे को जाके सेवा करनी है, पितृ देवो भव, तुम्हारे पिता तुम्हारे सेवा है, आचार्य देवो भव, तुम्हारे गुरुजन जो तुम्हारे शिक्षा दी है वो तुम्हारे लिए पूजनीय है, अतिथि देवो भव, जो घर में बगैर तिथि बताए डेट बताए बगैर फोन के आ जाए वो तुम्हारे लिए पूजने, फोन करके आए उसको अटेंड न करो कोई बात नहीं उसको बोल तुम अतिथि थोड़ी हो, फोन करके आए हो बैठो, अतिथि की सेवा होती है यहाँ अ मतलब न बताए, तिथि मतलब दिन न बताए कब आऊंगा और आ जाए, वो मानो के भगवान ने भेजा हुआ है। जब से फोन आ गया तब से अतिथि कोई रहा ही नहीं, पहले पहले कोई दरवाजा खटखटाता था, अरे आप आ गए कैसे दिल खुश होता था, अभी दो मिनट पहले फोन किया मैं नीचे खड़ा हूँ, अभी दरवाजा खोलते बोला अभी आ रहा है खोलो दरवाजा जो पहले जो आत्मीयता थी वो खत्म हो गई। असल में पहले चिट्ठी आती थी कितना इच्छा होती, अब चिट्ठी आएगी आज वो डाकिया कहीं नीचे देखो हमारी चिट्ठी तो नहीं आई है, कितना शौक था चिट्ठी का, अब चिट्ठी का नाम ही सब भूल गए इस फोन ने असल में प्रेम को इतना पानी मिला के दूध में पतला कर दिया क्या पता नहीं लगता है दूध और पानी क्या है, ऐसी हालत उसने कर दी। अब बड़ा आदमी किसको माना जाए जिसके पास फोन नहीं है, आगे चल के ये परिभाषा आएगी, जिसके पास फोन नहीं है वो बड़ा आदमी है, तो किसी के पास, हम तो इतने डिपेंडेंट हो गए हैं। तो बात कर रहे थे कि शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। शरीर जो है दिन उगने से और सूर्य अस्त होने तक शरीर समाप्त हो रहे हैं, आत्मा तो समाप्त हो नहीं रही, इसलिए इस शरीर को किसको अर्पण करना है ये मुख्य बात है। आत्मा तो है ही भगवान का, आप करो ना करो तो उधर ही जाना है, वो तो है ही उसी का, लेकिन शरीर के ऊपर कौन अधिकार जमाता है, माता पिता कहते हैं हमारा हमारा ये बेटा है हमने आपको शरीर दिया है, तो उसको कहने का अधिकार है, और फिर हम शरीर अर्पण कर देते हैं जीवन में, किसी की नौकरी करते हैं तो उसको अपने आप को अर्पण कर देते हैं, 12 घंटे उसके गुलाम है, वो जैसे कराएगा वैसे करेंगे। ऐसे जीवन में बहुत से, ये कहने का है किसको हमने जीवन में मालिक बना रखा है अपना, किसी न किसी को सबको इस दुनिया में मालिक बनाना पड़ता है, आप कोई भी कैसे नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूं, ये सत्य है कि नहीं है, किसी न किसी के अधीन रहना पड़ रहा है कि नहीं, किसी न किसी को मालिक बनाना पड़ेगा ना, इस जीवन में बनाना ही पड़ेगा। तो फिर वो मीरा की भाषा में कि अब पति करना ही है तो ऐसा करना चाहिए कि कभी 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 स्वाग समापति ना हो, तो ऐसा तो एक ही है, तो दिल का राजा वो ही है, ये पहले जानना चाहिए। बाकी बाकी शरीर की मर्यादा है पूरी करनी है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसको मैं चश्मा नहीं एक लाइन और बता दूं, इसमें लिखा है बड़ा अच्छा बुद्धिमाने से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक लाइन लिखी है, थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कहाँ है, अब भी यदि तुमने मतलब व्यवहार संसार का करते रहो, ऐसे शब्द एक अत तुम यतन पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह की निमित्त संसारिक व्यवहार करो, ये लिखना बहुत महत्वपूर्ण था। ये एक लाइन नहीं लिखते तो दुनिया में आदमी के रिश्ते सब खत्म हो जाते, रिश्ते नाते ही खत्म हो जाते। नाम तो भगवान का लो, लेकिन शरीर जो मिला है इसलिए उस शरीर का जीवन निर्वाह के निमित्त, जीवन निर्वाह के निमित्त मतलब किसी घर में पत्नी होके आए तो पत्नी का धर्म पालन करो, किसी घर में बेटे आए बेटी बन के आए तो बेटी का धर्म पालन करो, किसी घर में बेटा बन के आए तो बेटे का धर्म पालन करो, किसी के घर में सेवा करने आए तो सेवा का धर्म पालन करो, सांसारिक व्यवहार करो। तो इसका मतलब शरीर से कुछ काम हरेक के अलग हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के नाते भगवान का नाम ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो ये दो विभाजन हमको पहले करना चाहिए कि हम एक आत्मा और शरीर दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक चीज़ आत्मा है, उसका तो सिर्फ एक ही काम है कि भगवान के नाम का स्मरण करना, और मुख्य आत्मा का ही अस्तित्व है। आत्मा है तो हमारा शरीर है और सारे संबंध है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर किसी के काम का नहीं है, कोई इसको पहचानता भी नहीं है, कोई इसको अपना मानता भी नहीं। तो इसका अर्थ है मुख्य हमारे लिए आत्मा हो गई। शरीर शरीर साधन है, शरीर एक साधन है, शरीर के द्वारा साधन होता है, इसलिए अनित्य तो है, सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े काम आ सकता है। तो दिन और रात हमारे गुजर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एक क्षण क्षण हमारा कितना महत्वपूर्ण है, एक मिनट की कितनी कीमत है, और वो बेकार हमारा कहाँ जाता है, इसके ऊपर ध्यान देखो, कभी विचार करके देखो। जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है, हीरे जैसो मानव जन्म कोड़ी बदले जाए रे। श्वास श्वास, एक श्वास कितना कीमती है, सांस जो लेते हैं कितना, 3-4 सेकंड में एक सांस लेते हैं, एक सांस कितना बहुमूल्य है। सांस अंदर तो लेते हैं, फिर दूसरा सांस लेना होगा कि नहीं होगा ये हमारे बस में नहीं है। आदम कहते हैं आदमी को, आदम कहते हैं उर्दू में, आदम मतलब दम को सांस भी कहते हैं, दम आया तो आदम, दम गया तो गया आदम, दम का मतलब सांस। कहते हैं तुम्हारे में कितना दम है, इसका मतलब तुम्हारा प्राण में शक्ति कितनी है। तो ये सांस का कोई भरोसा नहीं है। विपत्ति, एक तो शरीर है थोड़े दिनों के रहने के वाला, और फिर इस शरीर के साथ बहुत सारे दुख इसके साथ ही आए हैं, ये बना है दुख। इस शरीर का धर्म ही ये मिट्टी ऐसी का बना हुआ है कि इसमें कष्ट आते ही रहेंगे, और एक रोज आते रहेंगे, यानी कि आज नहीं महीने के बाद आएंगे, रोज सुबह उठ के मुंह धोना ही पड़ेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। 6 घंटे छोड़ते हैं तो बेकार हो जाता है, तो 4-5 घंटे इसका ध्यान नहीं दें तो बेकार हो जाता है। तो इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, समय कितनी भी कीमत के ऊपर खरीदा नहीं जा सकता, कितनी भी कीमत दे दो शरीर समय खरीदा नहीं जा सकता। सिकंदर ने कहा था मैंने पूरी दुनिया को विजय किया है, अब लगता है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मेरा राज सारा आधा आधा राज में देता हूं, मेरे को कोई 1 महीना जिंदगी का दे दे। लेकिन सब ने कहा कि ये संभव नहीं है महाराज, हम जिंदगी कैसे देंगे। तब सिकंदर कहता है 1 घंटा ही जिंदगी का कोई दे दे, पूरा राज दे देता हूं, पूरे विश्व का राज देता हूं, मैं विश्व विजेता हूं। सेनापति ने कहा कि ये संभव नहीं है। तब सिकंदर ने कहा कि जिस पूरे जीवन के बल के ऊपर राज को मैंने कमाया था, पूरा जीवन लगा के जो राज कमाया था, आज वो पूरा राज दांव पे लगा रहा हूं और जीवन का 1 घंटा भी नहीं मिल रहा। लाखों घंटे जिंदगी के लगा के जो राज मैंने इकट्ठा किया था, आज वो सारा राज मैं दाव पे लगा के दे रहा हूं, उसके बदले में एक घंटा जिंदगी का नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा सीख मिली, शिक्षा मिली सिकंदर को। जैसे एक आदमी कहे कि मैं 60 साल की कमाई है, ये मैंने बिल्डिंग, घर, गाड़ी, मोटर बनाया है, और जब अंत समय आए बोला ये सब किसी को देता हूँ, मेरे को कोई एक जिंदगी का दिन दे, तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। इसलिए सिकंदर की अंतिम शिक्षा जीवन की ये है कि जब मेरा शरीर छूट जाए और मुझे कब्र में डालो तो मेरे हाथ ऐसे बाहर रखना ताकि दुनिया देखे कि विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ दुनिया से गया, कुछ नहीं ले गया। इस दुनिया से कोई कुछ ले गया नहीं, आज तक ले जा सकता नहीं है कभी, लेकिन सब लोग फिर भी इकट्ठा करने में लगे हुए। ऐसे इसको समझ लीजिए, आपको अपनी गाड़ी में सफर करना होता है ना, कार में, तो सब सामान डालेंगे, ये भी डालो वो भी डालो, क्या फर्क पड़ता है, अपनी गाड़ी को उठाना थोड़ी पड़ेगा। ट्रेन में जाना होता है तो थोड़ा समेट के कुछ सामान कम करना पड़ता है, कौन उठाएगा कौन उतारेगा। जहाज में चढ़ना पड़ता है, 20 किलो से ज्यादा उठाने देंगे, और काम बेकार के सामान निकालो, तो इसका मतलब हमारा काम थोड़े से चल सकता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा झमेला उठाने का प्रयास करते हैं। अब जहाज में 20 किलो में काम चल जाता है, अभी आगे चल के सस्ता टिकट वाला जहाज में कहेंगे कुछ भी नहीं उठाओगे, सिर्फ हाथ का थैला उठा सकते हो, तो भी आदमी उसमें काम चला लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम बहुत कुछ इकट्ठा करने लगे हुए हैं जिसकी हमें कभी जरूरत पड़ती भी नहीं। बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, घर में जाके देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, ला के सिर्फ हमने इसके सलिए सजा के रखी है कि दूसरे घर में देखी तो हमारे घर में ला के रख देते हैं बस, और कोई मतलब नहीं उसका, पैसा भी लगा दिया, पड़ी हुई है, किसी काम जिंदगी भर नहीं आएगी। सच है कि झूठ है? देखा है जाके बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं बेकार, आवश्यकता नहीं। इसलिए ये साधु महात्मा कहते हैं क्या जरूरत है, जब भगवान ने हाथ दिया है तो तकिया खरीद करने की क्या जरूरत है? क्या आप पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया है? क्या आदमी को घर में डब्बे के अंदर आटा रखने की जरूरत है? क्या पेड़ सब इतने निष्ठुर हो गए हैं कि फल नहीं दे रहे हैं क्या आजकल? ये साधु की परिभाषा है कि भगवान सबको देता है। संतुष्ट जीवन में रहना सीखना चाहिए, वो तब होगा जब हम अपने हृदय के राजा को पहचानेंगे। जब हमारा राजा हमारा पूरी दुनिया को दे रहा है तो हम क्यों कंगाल रहेंगे? जब हमने ये मान लिया और जान लिया कि हमारा मालिक जिसको हमने जीवन अर्पण किया है वो तो तीनों लोगों का नाथ है, उसके पास न कभी कमी हुई है न होगी न है, वो तीनों कालों में परिपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव, वो सब पूर्ण है, और जो उसके शरण में गया वो भी पूर्ण है। तो ऐसा जब विश्वास हो जाएगा तो फिर संसार के अंदर हमको संतोष होगा, तभी हमको शांति होगी कि हमारा कभी अहित होगा नहीं, हमारे को कभी संसार में शरीर है इसको कष्ट आएगा तो आ सकता है, आएगा तो उतर भी दे जाएगा। जो देख जो कष्ट देता है हमारे कर्मों का, अगर कष्ट आता है तो कष्ट को छुड़ाने की भी शक्ति भगवान दे देता है। तो ये पहला निर्णय जब हम करेंगे कि हमारे जीवन हमारा किसको हम अर्पण करें, व्यवहार के लिए किसको अर्पण करें और सही माना में किसको अर्पण करें, ये निर्णय करके आप अपने वो जीवन की डायरी में लिख लो, मैंने मेरा जीवन श्री कृष्ण को अर्पण किया। लेकिन श्री कृष्ण को लिखेंगे तो वो कहेगा मैं जानता नहीं हूं आपको, इसलिए आप लिखेंगे यशोदा नंदन को किया तो फिर थोड़ा सा कहेगा हाँ मेरी माँ का नाम लिया चलो इसकी बात मान लेते हैं। बोलोगे राधा राधा गोपीनाथ को किया है तो बोलेगा हाँ ये तो और मेरे प्रेमी राधा का नाम लिया चलो इसको स्वीकार कर लेते हैं। अकेला कृष्ण करना हम लोगे तो लिफ्ट नहीं कराएगा, वो बहुत टेढ़ा है। इसलिए यशोदा सूत्र लिखा है कि हमेशा किसी भक्त के नाम के साथ उसको जोड़ोगे तो उस भक्त की कृपा से आपको भगवान हो सकता है स्वीकार कर ले। विषम पितामह कहता है विजय सखा, तुम अर्जुन के सखा हो इसलिए मैं तुम्हारे को प्रार्थना कर रहा हूँ। अर्जुन के सखा हो, पार्थ सारथी हो, तो किसी न किसी संबंधी जिसके साथ कृष्ण का अटूट संबंध है उसका नाम कृष्ण के साथ जोड़ लिया करो। और हमने अपना जीवन आपको अर्पण किया हे गोपीनाथ, हे यशोदा नंदन, हे नंद नंदन। ये पहला निर्णय जीवन में ले लेना चाहिए और अपने दिल की डायरी के ऊपर ये पक्का करके लिखना चाहिए और चिन्ह के रूप में एक दिल का लॉकेट बना के उसमें ठाकुर जी जिसके नाम के साथ यशोदा नंदन तो यशोदा कृष्ण रखना, गोपीनाथ तो राधा कृष्ण रखना, पार्थ सारथी तो कृष्ण अर्जुन रखना, वो लगा दो दिल में। कम से कम बाहर से तो पता लगेगा कि मैंने जीवन किसको अर्पण किया, और कोई फिर कहेगा तो नहीं कि मेरा लॉकेट लगाओ, एक लगा हुआ है पे और कितने लगा। तो पहले ये निर्णय करो, फिर दूसरी लाइन भी लिखो कि संसार में व्यवहार करना है तो उस व्यवहार को कैसे करना है, फिर प्रायोरिटी हमारी क्या है, पत्नी के नाते पति हमारी पहली प्रायोरिटी है और बच्चे दूसरी प्रायोरिटी। पहले पति को सुखी रखना है, फिर बच्चों की देखभाल करनी, ये दो प्रायोरिटी हमारी होगी। अगर घर में परिवार बड़ा है तो बड़ा कौन है घर में, ये सब अपनी प्रायोरिटी फिर नेक्स्ट व्यवहार के लिए करो, लेकिन लॉकेट में और गुंजाइश रखो ही मत, नो चांस, उसमें चांस एंड च्वाइस बिल्कुल मत रखो, तब समझ में आएगा कि जीवन हमारा ठीक रास्ते पे है। तो एक ये फैसला करना मुश्किल है, लेकिन एक ये फैसला करने वाला कृष्ण भावना, इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना। इसका मतलब हर समय कृष्ण की स्मृति बनी रहे, तो कहाँ लटका रहे कृष्ण, हर समय दिल के ऊपर लटका रहे अथवा दिल में जो बसा रहे, वो तो पहले से बस रहा है लेकिन उसकी भावना हमारी बनी रहे, ये कृष्ण भावना है। फिर हमारा दिन उगने से शाम तक हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि हमने जिसको पहचानने के ढूंढने के लिए आए थे उसको पा लिया, अब तो हम उसके संग रह रहे हैं। अब यहाँ रहे या कहीं भी रहे वो तो हमारे से अलग होने वाला है नहीं, यहाँ नहीं रहे तब भी वो हमारे साथ ही है, क्योंकि उसका तो नाता आत्मा के साथ है, शरीर नहीं रहेगा आत्मा तो रहेगी और वो तो हमारे साथ फिर भी है, फिर उससे कभी हमारा अलगाव होने अलगाव होगा ही नहीं, उससे हम कभी जुदा हो ही नहीं सकते। तो ये इतना बड़ा ऊपर की बात है, अगर एक बार समझ में आ जाए, और वैसे ये भी समझ लो कि कहाँ रखेंगे कृष्ण को, दिल में रखेंगे, दिल में रखेंगे, दिल मन ये इसका परिभाषा एक ही है। तो जब मृत्यु आता है ना तो यमराज के दूत किसको ले जाते हैं, हाँ शरीर ले जाते हैं कि आदमी को, शरीर तो नहीं उठा जाते हैं ना, वो तो इधर ही पड़ा होता है घर में, हमको उठाना पड़ता है, ले जाएं तो जान छूटे वो भी उठाना पड़ता है, वो भी ले जाएं तो कितना परेशानी होती है, पीछे रोने का झंझट, देखेंगे नहीं तो रोएंगे कम, यमराज के दूतों से उठता नहीं है शरीर वो, हमको तो अपनी तकलीफ होती है कि हमारे को उठाने वाले हमको गालियां देंगे, हम विल करके जाएंगे हमें ट्रैक्टर में ले जाना। तो यम के दूतों को बोलो सर ही लेके चले जाए, ना कोई देखेगा ना कोई रोएगा ना कोई परेशानी करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं उठाते हैं तो किसको ले जाते हैं, आत्मा को भी हाथ नहीं लगा सकते, यम के दूतों को ताकत नहीं है आत्मा को हाथ लगाने की, सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं, किस चीज का बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार का, ऊंच मन चित्त बुद्धि अहंकार, कहीं चार लिखे कहीं तीन लिखे जो भी हो। अब जिसके दिल के अंदर दिल के राजा का फोटो होगा, यमदूत जब वहाँ आएंगे हाथ लगाने की कोशिश करेंगे मन को, तो उसके अंदर फोटो देखेंगे कृष्ण का, तो प्रणाम करके चले जाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। यही इसका राज है, यही इसका महत्व है कि जिसने कृष्ण को मन में बसा लिया उसको अंत समय रमजम के दूध हाथ लाए लगाए कि लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आके देखेंगे यहाँ तो हमारा मालिक बैठा है, हमारे मालिक का भी मालिक बैठा है, इसको हम कैसे हाथ लगाएं, तो फिर हाथ लगा ही नहीं सकते। इसलिए दिल में भगवान को बसाना जरूर। किसी और को बसाया है दिल में तो अच्छी तरह से कान से पकड़ के ले जाएंगे, बोला तुमने एक तो तुमने गलत आदमी को चुना, ये गलती की, और दूसरा तुमने भगवान को याद नहीं किया, तो तुम्हारी डबल डबल गलती हो गई। तो इसलिए सबसे बड़ा लाभ ये है हृदय में भगवान को बसाने का कि अंत समय सूक्ष्म शरीर के अंदर भगवान बसा हुआ है, तो जिसको अंत समय याद करोगे वहीं चले जाओगे, यमदूत के आने के लिए गुंजाइश ही नहीं रहेगी, चांस ही नहीं है। अंत समय अंत मति सो गति, अंत समय भगवान की याद रहेगी तो वापस भगवान के पास चले जाएंगे, और भगवान के पास चले जाएंगे तो नित्य हमारे जीवन का संबंध उनके साथ रहेगा। तो इस जीवन में आज अपन को यहाँ निर्णय ये करना है कि हम अपने दिल किसको देना चाहते हैं। परसेंटेज वाइज दोगे तो काम चलेगा नहीं है, 100% का फैसला करना है। लव जो शब्द प्रेम है उसकी परिभाषा है रिपोजिंग 100%, सब कुछ एक को समर्पण करना, और उसी को सुखी देखना अपने जीवन का लक्ष्य, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ है सब कुछ एक को अर्पण करना, उसी को सुखी देखना जीवन का लक्ष्य, बस इसी की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा ये है। और काम की परिभाषा है कि मुझे इससे क्या सुख मिलेगा, प्रेम का मतलब है मैं इसको सुखी कैसे रखूं, दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। लोहा और सोना में जितना अंतर है उतना प्रेम और काम में अंतर है। तो आज के सत्संग का एक ही आपके लिए ये प्रश्न है जो 2-3 दिनों में बैठ के आप सुलझाइए, दिल का राजा किसको बनाना है। शास्त्र ये कहता है, गीता भागवत ये कहती है कि भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन हमारे दिल का राजा बनना चाहिए, और उसको सुखी करने के लिए, उसके प्रीति के लिए हमारे जीवन में जो भी आवश्यक काम है उसका नाम सुमरण आदि करना है वो करना चाहिए, और शरीर के नाते जो भी व्यवहार करना है उनसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार ठीक तरह करना चाहिए। तो ये एक निर्णय अपने जीवन का पहले आप फैसला करो, जब आपकी दिल से ये बात आएगी तब आप ठीक तरह कर सकोगे, किसी और के कहने से नहीं करोगे। पहले ये आप निर्णय ले लो किसके और जीवन अर्पण करना है, इसी को बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न। लड़की बड़ी होती है, लड़का ढूंढना होता है, तो उसके सारे गुण देख के फिर ढूंढते हैं, एक बार ढूंढते हैं अर्पण करते हैं तो फिर वो जीवन उसके साथ है। ऐसे मानव जीवन में इन पुरुष को स्त्री को सबको जीवन के लिए भगवान को चुनना है, जिसके साथ हमारा संबंध स्थापित होना है। वो भक्ति विनोद की ठाकुर की भाषा में दिल का राजा, क्या शब्द क्या लिखा है वो भजन में, क्या शब्द है हृदय राजे, हृदय का राजा, और हृदय राजे का मतलब जो हृदय में ब्राजे, दोनों अर्थ इसके, जो हृदय में ब्राजता है उसको तो याद करते नहीं हो, बाहर की चीजों को याद कर रहे हो जो तुम्हारी दिल में आ ही नहीं सकती। हृदय राजे, हृदय में जिसका राज है, जो हृदय का राजा है, जो हृदय में ब्राजता है। तो एक ये जीवन में बात समझ में आ जाएगी तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे एक बार जीवन लड़की का विवाह होता है, जीवन में एक दिन एक बार लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे दिया पंडित जी ने, उसका सारी समस्याओं का समाधान हो गया, अब उसका जीवन का पालन पोषण सब कुछ का भार अपने आप उठ गया। ये दुनिया में देखने में आता है, ऐसे एक बार भगवान को जीवन में हमने पकड़ लिया, हाथ उसके हाथ में दे दिया गुरुजन के रास्ते माध्यम से, तो फिर हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई। इसको पाणी ग्रहण कहते हैं, हाथ को पकड़ना, पाणी ग्रहण, पाणी हाथ को कहते हैं, पाणी संस्कृत में हाथ, हाथ पाणी कहते हैं, चक्र पाणी, कृष्ण का नाम है चक्र पाणी, और सारंग पाणी धनुष लेता है रामचंद्र, सारंग पाणी कहते हैं। तो एक ये प्रश्न आज आपके लिए है, इस जीवन में किसको हम दिल का राजा चुनेंगे। यूनानिमस फैसला कर लो कि एक को चुनना है। और फिर सारी समस्याएं समाधान होंगी। एक काम करो, बाकी सब काम भगवान करेगा। आप सिर्फ एक निर्णय ले लो, बाकी सब काम उसका। दृदिल के राजा को चुनने के बाद उसको याद करते रहना, ऐसा नहीं अब बैठा है बेचारा, उसको याद करते रहना, उसकी सेवा करनी, चुनने के बाद उसकी सेवा करना, उसको प्रसन्न करना, उससे प्रेम करना, ये भगवान के, भगवत प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। जिंदगी बीती जा रही है, एक घंटा हमारा अभी का बीता, इसमें कम से कम हमने ये चर्चा की कि हम अपना जीवन किसको समर्पण करना चाहते हैं, और एक महात्मा साधु के भावों को हमने समझने का प्रयास किया कि दिन उगते ही जैसे सुबह होने लगती है चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर हरि कीर्तन करने जाते हैं। इसका अर्थ है कि उठते ही पहले भगवान को याद करना चाहिए। पहला काम जो जीवन में उठते भगवान को याद करता है, भगवान उसको याद रखता है। यू कीप भगवान को जीवन में पहले रखो, भगवान पहले आपको जीवन में रखा। भगवान को शाम तक बात कर लेंगे तो भगवान कहेंगे हम आपसे कल बात करेंगे। अरे कृष्णा बोलो खुशी। कीप लॉर्ड फर्स्ट इन दी फर्स्ट इन लाइफ। जीवन में भगवान को पहले नंबर पे रखो तो आपका नंबर भी भगवान की यादगिरी में पहले रहेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। आइए आइए, आप सबका स्वागत है। आइए बंसी का, आइए मुस्कान, आइए।
हरे कृष्ण।
बस एक लॉकेट बनाना है इनको, अब ये कौन बना के देगा ये फैसला करो। जो बना के देगा वो बोलेगा मेरा फोटो लगा, फिर गड़बड़ होगी। इसके लिए